ਬੁਕਤਬ ਬ੍ਰਹਮ ਘਰਸ਼ਣ ਸ਼ਨਾਨ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨ ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੇ ਮਨ ਵੀ ਗੰਦਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਰੋਗ ਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਰੋਗੀ ਹੈ ਵਹਿ ਕਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਸੇ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੂਬ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਅਤਾ ਸਰੀਰ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾ ਬਲਿਸ਼ਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਔਰ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਏਕ ਮਨੁਸ਼ ਮੁਹਰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਬਾਰਨਸ਼ ਮਲਾਇਆ ਹੁਆ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸਰਵੱਤਰ ਪੋਤ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਭਰ ਖੇਲਾ ਕੂਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਕੋ ਘਰ ਲੌਟਾ, ਥਕਾਵਟ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁਆ 8-9 ਵਜਨੇ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ, ਤਬ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਪੁਕਾਰਨੇ ਪਰ ਵੀ ਜਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਤਬ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਵਾੜ ਤੋੜ ਡਾਲੇ ਔਰ ਕਿਆ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਪੜਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਤੇ ਹੀ ਫੌਰਨ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਤਾਰ ਪੀਣ ਕਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਬਣ ਸੇ ਖੂਬ ਰਗੜ ਕਰ ਸਾਫ ਕੀਆ। ਜਬ ਉਸ ਮਨੁਸ਼ ਕਾ ਸਰੀਰ ਸਵੱਛ ਹੁਆ, ਚਮੜੇ ਕੇ ਸਭ ਛਿੱਦਰ ਜਬ ਸਾਫ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤਬ ਵਹੀ 25 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਸ ਲਈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ, ਅੰਤ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੇ ਯਹ ਸਿੱਧ ਹੁਆ ਕਿ ਨਾਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਸੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਚਮੜਾ ਕਹੀਂ ਅਧਿਕ ਸਾਂਸ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਕੇ ਛਿੱਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸੇ ਨਾਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੇਕ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵਹਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸਵੱਛਤਾ ਮੈਂ ਕਵੀ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਰਸ਼ਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕੀਆ ਕਰੇ। ਘਰਸ਼ਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇ ਤਵਚਾ ਕੇ ਸਭ ਛਿੱਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਤੇ ਜਾਣੇ ਸੇ, ਜਾਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਭੀਤਰ ਅਸੰਖ ਮਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਸੀਨੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧ ਤਥਾ ਪੀਤਲ ਜਾਣੇ ਸੇ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਘਰਸ਼ਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇ ਮਨੁਸ਼ ਅਧਿਕ ਤੇਜਸਵੀ ਨਿਰੋਗ ਨਿਰਵਕਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਔਰ ਦੀਰਘ ਜੀਵੀ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਾਪਨ ਸੇ ਬਹਿਰੋਗੀ ਬਕਾਰੀ ਆਲਸੀ ਵਿਸ਼ਈ ਔਰ ਅਲਪ ਆਯੂ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਾਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੌਬਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਰ ਕਾਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਕੌਬਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਰ ਪਰ 10-5 ਲੋਟੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਡਾਲ ਲੀਏ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਰੀਰ ਮਲਨੇ ਸੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੋ ਏਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਕੇਵਲ ਏਕ ਹੀ ਲੋਟੇ ਪਾਣੀ ਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਜੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਜੈ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਪਾਤਾ, ਪਖਾਨਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਯਸ਼ਾਗਨੀ ਮੰਦ ਹੋਣੇ ਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਸਦਾ ਅਪਾਚ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੀਤਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਪਰਮ दयालु प्रकृति माता खुजली दाद फोड़ों के रूप में शरीर के बाहर निकालने लगती है। रोग प्रकृति की स्पष्ट सूचनाएं हैं और मनुख की दुरस्ती के अंतम इलाज हैं। मनुष्य की दुरुस्ती के अंतम इलाज हैं। इतने पर भी यदि मनुष्य होश में न आए तो द्वार में इंतजार करती हुई मृत्यु उसे चट से अपनी गोद में ले लेती है। घर शनान हुंदा तौलिए नूं पिंडे नूं पूरा रगड़ के साफ करना की शरीरक विधि। स्नान के लिए प्रातः काल सबसे अच्छा समय है। प्रातः स्नान से दिन भर बड़े आनंद से बीतता है और आलस नष्ट होकर संपूर्ण शरीर चैतन्यमय बन जाता है। अतएव स्नान सूरज उदय के पहले ही कर लेना चाहिए। जाड़े और बरसात ठंडी और बरसात में 8, 10 या 25 मिनट और गर्मी में पूरा आधा घंटा। ते आम लोगों का है ते जेड़े भजनीक लोग हैं वो तो 1 बजे 2 बजे या 3 बजे 4 बजे उठ के स्नान क्रिया करके करते हैं, फिर भजन मंत्री करते हैं। ते गर्मी में पूरा आधा घंटा तक, जब तक के मस्तक पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक स्नान अवश्य करना चाहिए। सुपंदो से पीड़ित मनुष्य को शाम को दोबारा नहाना चाहिए यहां तक हो ताजा और स्वच्छ शीतल जल मस्तक पर खूब डालना चाहिए। स्नान के लिए कुएं का जल सब ऋतुओं में अनुकूल होता है। वह जाड़े में गर्म और गर्मी में सर्द होता है। स्नान के लिए कूप में से जल अपने ही हाथ से खींचो और उससे सीना और दंड पुष्ट हो जाते हैं। जाड़े से स्नान के पहले 10-12 दंड और 25 की बैठक लगा लेने से जाड़ा नहीं मालूम होता, ठंडी मालूम नहीं होगी। परंतु घर्षण स्नान में जोर से रगड़ने से जो कुछ व्यायाम होता है उससे शरीर में काफी गर्मी आ जाती है। स्नान के लिए पानी सदा स्वच्छ व विपुल रहे, इस बात का स्मरण रहे। स्नान के पहले सब शरीर सूखे तौलिए से व खुरदरे वस्त्र से मुलायम से नहीं खूब जोर से रगड़ो। रगड़ने में कुछ कमी ना करो और कुछ डरो कभी मत, पर हां उचित जगह पर उचित जोर लगाओ, नहीं तो सार मारे रगड़े के आंख ही फोड़ दूं लोगे। तौलिए से रगड़ने के बाद हाथ से रगड़ो। हाथ से रगड़ने से शरीर में एक बीली पैदा होती है जो कि शरीर के तमाम रोगों को हटाती है। इस कारण शरीर का प्रत्येक अवयव अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। जहां संघर्षण ना होगा उतनी ही जगह कमजोर और रोगी बनी रहेगी। यह बात ध्यान में रखो, पेट को ठीक रगड़ने से पेट के अनंत विकार नष्ट होते हैं और पखाना भी साफ होता है। स्नान के लिए बैठने पर गर्दन झुक कर सबसे पहले 1-2 लोटा जल से सिर भगाओ। यदि मस्तक प्रथम ना भुगोया जाए तो नीचे की तमाम गर्मी दिमाग में चढ़कर बड़ी ही हानि करेगी, स्मरण शक्ति नष्ट कर देगी, आंख की ज्योति बिगाड़ देगी, मन के विकार प्रबल होंगे और स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाएगा तंदुरुस्ती। इसी कारण ना नक्ष سنا سناچ آدی آدھ اردینا شرا سب سے پراتھم بنا سر پگوئے وا تو شنان پداپ نہ کرنا چاہیے. ایسی سوتر میں شاستر آ گیا ہے سب سے پراتھم بنا سر پگوئے بعد توئے شنان پداپ نہ کرنا چاہیے. ایسی سوتر میں شاستر آ گیا ہے اس شاستر رہس کو نہ جاننے کے کارن ہی آج نام روم کتنے ہی روگوں کو روکی اور الپاجو بننا پڑتا ہوگا. اتائے ساودھان رہو گلا سر پگونے کے بعد پھر گار کے رکھے ہوئے تولیے سے کرمشا ہاتھ کندھے سینہ پیٹ پیٹھ کمر ٹانگ پیر وغیرہ خوب رگڑو. پھر سر پر سے سمپورن شریر بھر میں جتھیشٹ پانی اڈیلو. تت پشچات سوکھو تولیے سے سوکھی تولیہ سے سمپورن شریر پونچھ ڈالو. شریر کو صاف رکھو گیلا پن کے کارن منوچ کو اکثر داد کھجلی ہوا کرتی ہے. کھجلاتے کھجلاتے لڑکوں کو بری عادتیں لگ جاتی ہے. پھر توتی جوں ہی لپیٹ کر کھلی پرکاش میں جگہ سے سوری شنان ارتھات سمپورن کی کرنوں شریر پر لیتے ہوئے تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلو. شریر پورا سوکھ جانے کے بعد پھر توتی پہن کر کے اپنے کندھے میں لگ جاؤ. دیکھو ایک ہی دن میں گرشن شنان سے آپ کے شریر میں کیسا اتساہ آنند پھرتی اور کانتی دکھائی دیتی ہے. ہمارا مکھ ان سب ابیبوں کی اپیکشا جو اتنا سندر اور تیجسوی دکھائی دیتا ہے اس کا مکھ کارن گرشن شنان ہی ہے. جدی ایک ہی دن میں گرشن شنان سے منوکھ میں اتنا آنند اتشاہ آروگ شانتی و کانتی دکھائی دیتی ہے تو نت پرتی اس پرکار ودھی پورو کرشن شنان کرنے سے منوش کا آنند اروگ شانتی و کانتی اور بھی ادک بڑھے گی. اس میں سندے ہی کیا ہے. شنان کے کچھ شاستری نیم. نمبر ایک روز دو پارت کے شنان کرنا دو مرتبے شنان کرنا اچھا ہے. روز دو مرتبے شنان کرنا اچھا ہے. گرمی کے دنوں میں تو ہم کو دو مرتبے شنان کرنا ہی چاہیے کیونکہ دن بھر میں پر کے پسینے کے کارن شریر سے بڑی بدبو نکلنے لگتی ہے. پسینے میں بہت زہر ہوتا ہے. یہ بات دھیان میں رکھو. نمبر دو مہینے میں ایک مرتبے گرم پانی اور صابن یا سوڈا سے نہانا بھی سوستھ پرد ہوتا ہے. توچائیں اور صاف ہو جاتی ہے. پرنتو روز گرم پانی سے نہانا اچھا نہیں ہے. جے آپرکرتک ہے. اس سے منوش کمزور نازک چنچل بابشی بن جاتا ہے. نت گرم پانی سے نہانا برہم چرج کے لیے بہت ہانی کارک ہے. ندی اور تالاب کا نہانا और भी अच्छा होता है। शास्त्र में समुद्र की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि समुद्र जल में एक प्रकार की बिजली होने के कारण मनुष्य अधिक निरोग और चेतन बन जाता है। जली करके पानी में भी समुद्र का नमक मिलाकर स्नान किया जाए तो उससे विशेष फायदा होता है। बाद में शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिए। चौथा, तैरने में कभी अवयवों का व्यायाम होता है, सीना पुष्ट और विस्तीर्ण होता है, फेफड़े शुद्ध और बलवान होते हैं और संपूर्ण शरीर निरोग फुर्तीला सुदृढ़ दमदार उत्साही और शक्तिशाली बनता है। परंतु तैरना नियम पूर्वक चाहिए। तैरना अपने और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी कला है। क्या डूबते समय हमारी किताब काम देगी? कदाप नहीं। अतः इस हुनर को स्वास्थ्य की दृष्टि से हर किसी को अवश्य सीख लेना चाहिए। पंचमन, स्नान भोजन के पहले व बाद में 3 घंटे के अंतर पर करना चाहिए। नहाने के बाद तुरंत भोजन करने से अथवा भोजन के बाद तुरंत नहाने से पित्त बढ़ जाने के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिससे के रोग व मानसिक बकार उत्पन्न होते हैं। अतएव सावधान रहो। 6, रोगी दुर्बल व नाजुक मनुख को हफ्ते में एक बार ताजे ठंडे जल से जरूर नहाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे ठंडे जल से नहाने का अभ्यास कर डालना चाहिए। तौलिया से 7वां तौलिया से रगड़ने और थोड़ी सी कसरत करने पर भी यदि बहुत ही जाड़ा मालूम होता हो तो हमें स्नान हरगिज न करना चाहिए। स्नान की जगह एकांत सुखुली हवादार प्रकाश में होनी चाहिए। स्नान के समय शरीर पर जितने ही कम कपड़े हों उतना ही अच्छा है, क्योंकि खुले शरीर पर सर्दी गर्मी असर नहीं कर सकती। लंगोट पहनकर नहाना बहुत अच्छा है, अर्थात भाव नगन नहीं होना चाहिए। कशहरे वाले से बहुत इज्जत वस्त्र है। जद भी कईयां ने कई तरह के नहाउण पसंद किया है, तथापि वह भारतीय सभ्यता के सर्वथा विरुद्ध है जड़े नग्न होके नहाते हैं। ये भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। भारतीयों के लिए कशहरा लगोट सहित नहाना ही सर्वश्रेष्ठ है। ओज पात होने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। जापानी लोग घर्षण स्नान का महत्व भोजन से भी अधिक मानते हैं और इसी कारण आज वे इतने उत्साही दीर्घायु और सब बातों में तेजस्वी दिखाई देते हैं। परंतु हम लोग उन्हीं के भाई मुर्दों के समान निर्वीर गोबर गणेश दिखाई दे रहे हैं। यह कितनी शोक और लज्जा की बात है। अब हमें अवश्य ही जागना चाहिए और हमेशा उन्नत प्रद काम करना चाहिए, उन्नति प्रद चाहिए और हमेशा उन्नति प्रद काम करना चाहिए अपनी उन्नति वास्ते। सब उन्नति का मूल शरीर है, अतः उससे पहले सुधारना चाहिए। जो ही हाथ कमाने से जैसे कोई बर्तन पात्र साफ नहीं हो सकता, उसे जोर से रगड़ना पड़ता है। तद रूप शरीर रूपी बर्तन पी बगैर घर्षण स्नान के बाहर पीतर से साफ और चमकीला नहीं हो सकता। काक स्नान से मनुख सदा रोगी मलिन आलसी विषयी निस्तेज अल्पायु होता है, परंतु वही मनुख यदि घर्षण स्नान आज से ही शुरू कर दे तो थोड़े ही दिनों से पूर्ण निरोग निर्वकारी उत्साही व तेजस्वी बन सकता है। ब्रह्मचर्य तथा दीर्घ जीवन के लिए घर्षण स्नान अत्यंत आवश्यक और अमृत तुल है। सातवां, सादा व ताजा अल्प आहार। वक्ता, ब्रह्मचर्य और भोजन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें अपना अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। जिसे ब्रह्मचारी बनना है उसको सादा और अल्प आहारी अवश्य ही बनना होगा। अधिक भोजन करने वाला सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि जोर की आंधी जैसे पेड़ों को उखाड़ डालती है वैसे ही कामदेव पेटू मनुख को पटक पटक कर मार डालता है। अधिक भोजन करने वाला पुरुष किसी हालत से ओज नहीं रोक सकता, उसका चित सदा विषय की ओर लगा रहता है, मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं, आयु कट जाती है और स्वार्थ व परमार्थ दोनों मलिया मेट हो जाते हैं। यदि आपको रोगवान बनना हो ते अकाल मृत्यु से बचना हो तो आपको अवश्य ही सादा और अल्प आहारी बनना होगा। एक समय ईरान के बादशाह बहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा, दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए? उत्तर मिला, 100 दिरहम अर्थात 39 तोला। फिर पूछा, इतने से क्या होगा? ते हकीम बोला, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए, इसके उपरांत जो कुछ खाया जाता है बस बोझ ढोना और उम्र को खोना है। यह सिद्धांत है कि आहार निद्रा भय मैथुन क्रोध कलह आदि बातें जितनी बढ़ाई जाए उतनी ही बढ़ती जाती है और जितनी कम की जाए उतनी ही कम होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, दो बार सम्मत करके खाने वाला बुद्धिमान बा भगवान है और इसे अधिक बेअटकल खाने वाला महामूर्ख अपागा और पशु से भी अदम है। सच है, गले तक खूब ठूस ठूस करके खाना और फिर पछताना कौन बुद्धिमानी है? ये क्या भगवान के लक्षण है? भोजन सुख के लिए खाया जाता है या दुख के लिए? जिस भोजन से दुख ही उपजता है उस भोजन को बेशतुल ही समझना चाहिए। भोजन तारता भी है और मारता भी है। अधिक भोजन से मनुख जीते ही मुर्दा और बेकार बन जाता है। भगतदास बामन कहते हैं, अधिक बाजू के भरन से फूट बाल फट जाए, बड़ी कृपा भगवान की पेट नहीं फट जाए, जद पी न दीखत और फटा फटक मनज की दे, रोग भयंकर होता है बने नरक के गे। अतः तंदुरुस्ती के लिए खाओ, रोगी बनने के लिए मत खाओ। जो कुछ खाओ جینے کے لیے کھاؤ، مرنے کے لیے مت کھاؤ۔ بہت بھوجن کرنے والا بہت جلد مرتا ہے۔ امریکہ کے پرسدھ ڈاکٹر میک ہائڈن ہارڈن کہتے ہیں کہ آج کل سادھارنتا لوگ بھوجن کے بہانے جتنے پدارتھ کا ستیاناش کرتے ہیں ان کے چترنس سے ہی ان کا کام بڑے آنند سے چل سکتا ہے۔ اکال میں ان کے ابھاؤ میں لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے سوکال میں ادھک ان کھانے سے طرح طرح کے روگوں سے مر جاتے ہیں۔ دیش میں دشکال پی پیٹو لوگوں کو ہی کرپا سے پڑتا ہے، اتا پیٹو منوکھ کو سوئن اپنا تتھا دیش کا بھی بیری سمجھنا چاہیے۔ ارے غریب لوگ بےچارے بھوجن نہ ملنے سے مرتے ہیں، اور تنی تتھا پیٹو لوگ ادھک کھانے سے مرتے ہیں۔ کیول مدھم شرینی کے متاہاری پرش ہی برہمچاری اور دیرگ جیوی ہو سکتے ہیں۔ دیش میں پلیگ کالرا بھی پیٹو لوگوں کے ہی کارن ہوتے ہیں، کیونکہ پیٹو منوکھ بہت گندے ہوتے ہیں، کمانا کھانا اور پخانا یہ ہی ان کے اس سنسار میں تین مکھ کام ہوتے ہیں، اور انت میں یہ کھاتے کھاتے ہی مر جاتے ہیں۔ پیٹو منوکھ سدا دکھی آلسی روگی اور الپایو بنا رہتا ہے۔ دیش میں جب کوئی روگ پھیلتا ہے تب پیٹو منوکھ سب سے پہلے کاڑ کا شکار بن جاتا ہے، اور اس بات کا انبھو ہیجا کے دنوں میں پرتکش ہوتا ہے۔ ہیجا کی بیماری سب سے پہلے ادھک بھوجن کرنے والوں ہی کو ہوتی ہے، کیول الپہاری پرش ہی بچ سکتے ہیں۔ اتا سجنوں ادھک بھوجن کرنا پرپکار کے لیے نہیں تو سوارتھ کے لیے ارتھات اپنے ادھار کے لیے اوش چھوڑ دو، صرف جتنا پچا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ۔ اس سے ایک پی کور زیادہ کھانا منو اپنی آجو ایک ایک دن کم کرنا اور اکال میں کال کے منہ میں جانا ہے۔ شری منو جی مہاراج کہتے ہیں انوگیم ان آجوشن آسورگن چاہتی بھوجنم اپنم لوگ بے دشٹم تسمات تک پری پرجیت۔ جدی بھوجن لوگوں کو بڑھانے والا، باجو کو کٹانے والا، نرک میں پہنچانے والا، پاپ کرانے والا اور لوگوں میں نندت کرانے والا ہے، یعنی خلام منوک بڑا پیٹو ہے، اس پرکار کی بدنامی کرانے والا ہے۔ اتا بدھیمان کو چاہیے کہ الپہار کیا کرے، کیونکہ کہا ہے ایز اے مین ایٹس سو بی بیکمت، جیسا منوکھ بھوجن کرتا ہے ویسا ہی وہ بن جاتا ہے۔ جدی منوکھ دو سال پریانت لگاتار سادہ ارتھات ساتوک الپہار کیا کرے گا تو اس کی بدھی آپ سے ہی نشٹ ہو جائے گی، اس سے ایشوریہ تیج پرگٹ ہونے لگے گا۔ کچھ ہی دنوں تک ابھیاس کر کے دیکھ لیجیے۔ ساتوک آہار جو تازہ، رس یوگ ہلکا، سنیہ یوگ ستھر نلٹیٹیوس مگر اور پریا ہو، جیسا گیہوں چاول جو ساٹھی مونگ ارہر دودھ کی چینی سیندا نمک رتالو پاو شکر کھانا شد و پکے پھل، ان کو ساتوک آہار کہتے ہیں۔ راجسی آہار اتینت اوچھن کڑوا تیتا نمکین اتینت میٹھا روکھا چرپرا کھٹا तैल योग दोष योग गृष्ट, जैसे पूरी कचौरी माल कुआ खट्टा लाल मिर्च तेल हींग प्याज लहसुन गाजर शराब चाय काफी डाफी कोकीन चरस चंडू, इनको राजसी आहार कहते हैं। राजसी आहार में मन चंचल कामी क्रोधी लालची और पापी बन जाता है। रोग शोक दुख दैन बढ़ते हैं और आयु तेज समर्थ और सुभाग रोग के साथ कट जाते हैं। राजसी पुरुष कदाप ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तामसी आहार, तामसी आहार में राजसी आहार आता ही है, परंतु इसके अलावा जो बासी रासहीन गला हुआ दुर्गंधित जैसे एक साथ तेल व घी के पदार्थ खाना वगैरह जी के रणत बाद निंद होता है, इसको तामसी आहार कहते हैं। तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा रोगी दुखी बलहीन क्रोधी लालची आलसी दरिद्री अतर्मी पापी और अल्पायू बन जाता है। अंत में नरकगामी होता है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अपना उद्धार करना है, उन्हें चाहिए कि राजसी तामसी आहार को छोड़कर दैवी तेज बढ़ाने वाला सात्विक अल्पहार आज से ही शुरू कर दें। परंतु यह ध्यान में रहें कि सात्विक भोजन भी बासी हो जाने पर तामसी बन जाता है और अधिक खा लेने से राजसी। इतना ही नहीं बल्कि प्राण हरण करने वाला महान तामसी भी बन जाता है। अतः अल्पहार सात्विक आहार कहा जा सकता है। भोजन अच्छी तरह से कुचल कुचल कर खाना चबा चबा यह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इतने से मंगुली भोजन अत्यंत विष्ट व पुष्ट मालूम होता है। मजे में पचता भी है, पखाना भी साफ होता है, भोजन भी कम लगता है और इस प्रकार दैहिक आर्थिक तथा देश की दृष्टि से भी अधिक लाभ होता है। परंतु जल्दी जल्दी खाने से मनुष्य सदा दुखी मलिन कामी पेटू अत्यंत रोगी उदासीन क्रोधी चिड़चिड़ा मलिन चिड़चिड़ा और अल्पायू बना रह चिड़चिड़ा मलिन कामी पेटू अतृप्त रोगी उदासीन क्रोधी चिड़चिड़ा और अल्पायू बना रहता है। बदहजमी और कब्जियत भी इसमें हुआ करती है। जल्दी दांत टूटने का भी यही कारण है। पशुओं के दांत अंत तक नहीं टूटते। इसका मुख्य कारण चर्बत चर्वण ही है। अतः दांत से खूब काम लो, क्योंकि पेटू के दांत नहीं होता। दांत कुछ दिखलाने के लिए नहीं दिए गए। यदि मनुख प्रत्येक ग्रास 30-40 बार अथवा प्रकृति के हिसाब से 32 दांत के लिए 32 बार खूब चबा चबा के खाएगा तो आज यह जितना भोजन करता है उनसे तिहाई भोजन में उसकी पूरी तृप्ति हो जाएगी और प्राण शक्ति का भी बहुत कम नाश होगा। भोजन भी बहुत जल्द पचेगा। पखाना भी साफ होगा और इंद्रिय दमन की भी शक्ति उसे बहुत जल्दी प्राप्त होगी। भक्ति का जे स्वयं का अनुभव है उसे कोई भी अजमा सकता है।